Vestigial organs. Vestigial organs are remnants of the structures in an organism that had important functions in ancestors but now have no functions or reduced functions. ये ऐसे organs होते हैं जो के ancestors के अंदर जो है functional थे लेकिन उनकी औलादों के अंदर जो है ये कम functions रखते हैं या इनके बिल्कुल कोई function नहीं होता. जैसे के आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमंस के अंदर होती है अपेंडिक्स जिसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. वर्मी फॉर्म इसलिए कहते हैं कि इट्स शेप रिजेंबल्स टू द वर्म. So the human's vermiform appendix is often considered a vestigial organ. Vermiform means worm, shaped or resembling a worm. It is a small tube-like structure attached to the cecum. यहाँ पे गौर से समझिएगा, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है. लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स दिखाए हैं. जो पहला पार्ट है ये कहलाता है सीकम, उसके बाद असेंडिंग कोलन, कोलन है, उसके आगे पार्ट्स होते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, और उसके बाद एक हिस्सा आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन, और उसके बाद आ जाता है रेक्टम, और उसके बाद आ जाता है एनस. ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आकर खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जहां पर आकर खुलता है वो कहलाता है सिक्कम. और उसी सिक्कम से यहां पे देखें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही है जिसको आप कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है. और ये वर्म लाइक होती है तो इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं. अब इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो ख्याल किया जाता है कि इसका ह्यूमंस की बॉडी में कोई खास फंक्शन नहीं है, ठीक है. और आपको मैं एक बात बताता चलूं कि ये बिल्कुल ही बेकार नहीं है. एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको हम कहते हैं सेफ हाउस थ्योरी. सेफ हाउस थ्योरी के मुताबिक जब आपको कोई गट इन्फेक्शन होता है जिसको आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का इन्फेक्शन या जीआईटी का इन्फेक्शन कहते हो, तो उस सूरत में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना वो यहाँ पे अपेंडिक्स में आके पनाह ले लेते हैं. तो जब आपका फिर वो गट का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है जीआईटी का, तो वो बैक्टीरिया जो है वो अपेंडिक्स से बाहर आके अपने आप को दोबारा रिकॉलोनाइज कर सकते हैं. तो एक तो ये फंक्शन हो गया. दूसरे नंबर पे इसका इम्यून सिस्टम वगैरह में भी फंक्शन होता है, तो इसलिए ये इतनी भी बेकार नहीं है. लेकिन ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये उतनी फंक्शनल नहीं है जितना कि हमारे एंसेस्टर्स में थी. एंड आल्सो इन द हर्बीवोर्स द अपेंडिक्स इज ऑफन लार्जर एंड मे प्ले अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हाउएवर इन मेनी कार्निवोर्स द सिकम एंड अपेंडिक्स आर रिड्यूस्ड इन साइज रिफ्लेक्टिंग डिफरेंसेस इन द डाइट एंड डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी. यहां पे देखें ना, सिकम का भी साइज जो है वो छोटा है और अपेंडिक्स का भी छोटा है. तो इसलिए ख्याल किया जाता है कि जो अपेंडिक्स है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसके अब रिड्यूस्ड फंक्शन है एज कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स. इसी तरह स्केलेटन. Skeletons of the whales have small vestigial pelvic bones that are remnants of the pelvis that once supported the hind limbs. अब यहाँ पर देखिए whale है, तो whale में आपको यहाँ पे करके ऐसे हड्डियाँ नजर आती हैं. इन हड्डियों को अगर मैं zoom करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं. इसमें देखें कि ilium है, ischium है, pubis है, और आपको पता है कि ये तीनों हड्डियाँ जो हैं ये मिलकर pelvis बनाती होती हैं. यहाँ पर देखिए human के skeleton के साथ अगर हम compare करें तो ilium, ischium और pubis जो है ये मिलकर आपकी pelvis बनाती है. तो इसका मतलब है कि pelvic bones जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं whales के अंदर. फिर यहाँ पे आपको femur और टिबिया भी बाजू का जो है वो देखने को मिल जाती है. और आपको पता है कि फीमर, टिबिया और फेबुला जो होती हैं वो तो लेग की बोन्स होती हैं. तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ठीक हो गया. ये वेल्स जो हैं अब इनमें ये हड्डियां किसी काम की नहीं हैं. और ऐसा ख्याल किया जाता है एवोल्यूशनरी नजरिए के मुताबिक कि इनके एंसेस्टर्स में यहाँ पर पेल्विस और जो लेग्स वगैरह हैं वो होती होंगी, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गई, तो अब हड्डियों के सिर्फ रेमिनेंट्स हैं और ये हड्डियां अब फंक्शनल नहीं है, लिहाजा इनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स ख्याल किया जाता है. पर आपको पता है कि ये जो बोन्स होती हैं ये तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जुड़ी हुई होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और स्पाइन से, लेकिन वेल के अंदर ये नहीं जुड़ी हुई होती. यहाँ पर देखें कि ये अलग ही हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम से और स्पाइन से जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, इनका कनेक्शन वहाँ पर नहीं है. इसी तरह आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमर जिसको थाई बोन कहते हैं और टिबिया वगैरह भी जो आपको बाजूकात मिल जाती है. एंड सिमिलर इज द केस विद द स्नेक्स. और अगर स्नेक्स के अंदर आप देखेंगे तो स्नेक्स के अंदर भी आपको ये केस मिलता है. यहाँ पर देखें कि ये ह्यूमंस ने पेल्विक गर्डल दिखाई है, और यहां पर देखें कि स्नेक की बॉडी के पीछे की तरफ भी ये इस तरह दो हड्डियां हैं जो कि पेल्विक गर्डल के रेमिनेंट्स लगते हैं। और इसी तरह यहां पर देखें ये हाइंड लिंब होती है, यानी कि थाई बोन है हाइंड लिंब में, और यहां पर ये वाली जो बोन है ये थाई बोन्स को जो है वो इंडिकेट करती हैं। तो ये भी जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स ख्याल किए जाते हैं, रेमिनेंट ऑर्गन्स ख्याल किए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे उनमें पेल्विस और वो लेग्स वगैरह होती होंगी, बाद में वो ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो पेल्विक गर्डल की हड्डियां और ये जो हाइंड लिंब की थाई बोन्स हैं ये अभी भी यहाँ पर स्नेक में मौजूद हैं। ईयर मसल्स इन द मैन, ऑरिकुलर मसल्स भी इनको हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये कान के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं जिनको ये शो किया गया है वाइट एरोज के साथ, ये ईयर मसल्स कहलाते हैं। ऑरिकुलर मसल्स स्मॉल मसल्स अराउंड द पिन्ना, यानी कि ऑरिकल यानी कि एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना या ऑरिकल के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑरिकुलर मसल्स कहते हैं। जैसे कि ऑरिकुलरस सुपीरियर ये वाले जो हैं, उसके बाद ऑरिकुलरस एंटीरियर जैसे कि ये हैं, और उसके बाद ऑरिकुलरस पोस्टीरियर जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मसल्स हैं ह्यूमंस के अंदर मैन के अंदर दे आर आल्सो कंसिडर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक हो गया, बट तमाम मैमल्स में नहीं, कुछ मैमल्स के अंदर जो है वो इन मसल्स के काम होते हैं। क्या काम होते हैं वो मैं आगे जाके बताता हूँ। इन मैनी एनिमल्स जैसे कि कैट्स डॉग्स एंड हॉर्सेस दीज मसल्स आर वेल डिवेलप्ड एंड अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ द ईयर्स टू बेटर कैप्चर द साउंड। जैसे कि ये एनिमल्स हैं डॉग्स हैं कैट्स हैं हॉर्सेस हैं, तो ये अपने कानों की जो डायरेक्शन है ना उसको ऐसे मूव कर सकते हैं टू बेटर कैप्चर द साउंड, तो वहां पर ये मसल्स जो हैं वो उनमें काम आते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर मैन के अंदर जो हैं ये इतने ज़्यादा काम में नहीं आते, इनका फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा लार्जरली रिड्यूस्ड है, लार्जरली नॉन फंक्शनल है ये, तो इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर कंसिडर्ड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज दे सुजेस्ट दैट द ऑर्गेनिजम्स कैरिंग देम शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री विद स्पीशीज इन विच दीज स्ट्रक्चर्स हैड अ मोर प्रोमिनेंट रोल। यही हम शुरू से कह रहे हैं ना कि जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ये एंसेस्टर्स के अंदर जो हैं वो फंक्शनल रहे होंगे, लेकिन बाद में ये जो हैं डिसेंडेंट्स के अंदर फंक्शनल नहीं रहे, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमने स्नेक की हड्डियों की बात की थी कि पुराने जो स्नेक थे प्रिमिटिव उनमें पेल्विस और लेग्स होती होंगी, बाद में खत्म हो गई तो हड्डियां पीछे रेमिनेंट के तौर पे रह गई, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाती हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन एवोल्यूशन का एक एविडेंस है कि चेंजेस आई हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि इस स्नेक के अंदर आई, जैसे कि इस व्हेल के अंदर आई, जैसे कि यहां पर हमने बात की इन मसल्स की ऑरिकुलर मसल्स की कि यहां पर आई कि एंसेस्टर्स के अंदर जो हैं ये फंक्शनल है लेकिन हमारे अंदर इतने ज्यादा फंक्शनल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के तौर पर माने जाते हैं।